करने वाले और खुशी पैदा करने वाले थी, फायदा बढ़ाने वाले समारा दिन तो बहुत आसपास आ गया। लेकिन वो निशानी क्या होगी जिसको अपने पास सबसे बड़ी निशानी है? मतलब आसन ने कहा कि मैं वो निशानी अभी आपको आसन करता हूं और बयान भी खत्म नहीं हुआ, बयान आनी चाहिए और इस तरह और आरत करना चाहता और जितना सुना तो समझ रहा कि तुम बड़े आक्रमण इंसान हो और होशियार इंसान हो, इशारों का बात समझते हो, लेकिन आप पता चला कि तुम इशारों का बात नहीं समझते हो, बल्कि एक कसम की हिमाचत सुना लगा रहा है। अपने हिमाचत के लफ्ज कहना का आतंक सैयद एक मरतबा जोर से हंसना था क्या हमेशा खड़ा हो मैं समझा था कहा कि क्या मैं सैयद आपको उनकी ईसा इस्लाम की वसीयत याद नहीं है? क्या उनकी ईसा इस्लाम ने फरमाया अगर किसी कौम का आलिम बगैर वजह से हंसे तो या तो उस पर हमलत तारी हो गई है और हमलत का तारी होना बताया कि ईमान चला गया, या उस पर मस्ती छा गई और मस्ती छाना वो इस बात की दलील है कि उसके असल जाया है। क्या आपने अरे ईसा की खसियत को नहीं पढ़ा? एक मतलब सैयद खड़ा हो, सैयद खड़े होकर के और ऐसा से कहता है कि क्या आपने अभी ईसा के सलाम की वसीयत नहीं पढ़ी कि एक इंसान इंतहाई अफसर होता है कि जो जाहिरी तौर पर हंसता मुस्कराता हो लेकिन अंदर से हम नहीं हो। आज मेरी हालत यही है, इसलिए जो है इसके कैफियत में हो, इसलिए आपकी बात से यह बात ज्यादा होता है। मतलब ऐसा ने कहा कि अच्छा ठीक है आप कैसे तो मान देते हैं जाहिर तौर पर फसल पाते हैं तो कमजोर रहे हैं, लेकिन वो निशानी क्या है? सबसे अहम निशानी वो तो अभी तक आपको बताइए आप समझते क्या है? आप भी नहीं समझ आप समझते क्या है? बात नहीं कौन सी है? और मैं अभी बात नहीं करता हूं कहा कि जबरदस्ती चाहे चला सूर्य में है तो सब सूर्य जो हसीियत नमाज की इच्छा का है उसमें ईसा इस्लाम ने इशारा फरमाया था कि मक्का में एक नबी जाहिर होगा जिसकी कैफियत यही होगी कि उसके करीब करीब आप करीब करीब आदमी पर जुल्म किया जाएगा और आखिर में उस पैगंबर की औलाद से शख्स आएगा जो लाखों साल के बाद वो जो बेटा पैगंबर का आएगा पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और जौ से भरने के बाद दुनिया में अदालत को इंसाफ बनाएगा और दुनिया शर्म को गर्व में जन्नत के नमूना पेश कर रही होगी और इंतजार नजर तक उस रसूल के बेटे की हुकूमत कायम हो जाए। अब तो इंसाफ की हुकूमत जिसकी खसूसियात कल गिना चाहिए लेकिन सैयद ने कहा इससे पता चलता है कि रसूल का बेटा क्या लाखों साल के बाद आने वाला हो लेकिन है तो रसूल का बेटा। इसका मतलब ये कि रसूल जो आखिरी रसूल जिसको आप मदीना में रसूल कहते हैं अगर ये रसूल वही रसूल है कि जिसका बेटा आपकी हुकूमत करेगा और खातम अल-अंबिया है तो इसका मतलब ये है कि इसका भी बेटा होना चाहिए और हमें जो इतना उसके मुताबिक अरल खदीजा से जो मक्का में कुरैशिया औरत थी उससे अरल कासिम की विलादत हुई थी लेकिन अरल कासिम कैसे पैदा हो गए। फिर उसके बाद भारतीय खदीजा से जो है पैगंबर की विलादत हुई और वहां पर हजरत इब्राहिम की विलादत जो है उसके बाद हजरत इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया पैगंबर के बेटे का। इसलिए हमारे इंतकाल के मुताबिक तो इस वक्त पैगंबर का कोई बेटा नहीं, दो बेटे थे दोनों इंतकाल कर चुके और तुम भी इस तरीके में रहते हो तुम्हें भी इस बात की बड़ी पक्की इंतकाल है जितना हमें इंतकाल है। इसलिए जब दोनों बेटे इंतकाल कर चुके तो पता चला कि वो नबी नहीं है वही नबियों जिसका बेटा आकर लाखों साल के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। बस पता चला कि इस नबी की अलामत यह कि कोई ना कोई बेटा होना चाहिए ताकि नस्ल दर नस्ल चलती रहे। मुझे अफसोस है और ताज्जुब भी करता हूं क्या ईसाइयों से आम आदमी ये बात कहता हूं मैं उसमें मान लेता कि एक आम आदमी से मदद नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग तो अगर ईसा के वसीयत नाम से बहुत खूब खूब वापस पुत्र सारियत नामा तुम्हें जमा दिया और तुम सही पर आसमानी के इतना माहिर हो उसके बावजूद तुम लोग इस तरीके की बात कर रहे हो इसमें लोगों को कंफ्यूज करके धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ताज्जुब है क्या तुमने हजरत ईसा की वसीयत नहीं पढ़ी क्या हजरत ईसा ने शराब में इरशाद फरमाया कि तीन लोग रोजे कयामत इतना अफसोस कर रहे होंगे कि जिनके अफसोस की हालत देखने वाली हो उससे बढ़कर कोई और अफसोस नहीं कर रहा होगा। फायदा वो शख्स कि जिसके पास माल हो खर्च न करे। अरे माल है तो खर्च करो, माल खर्च करने में तैयार नहीं है। जिसके पास तलवार है उस तलवार को रात घोड़ा में चलाने के लिए तैयार नहीं होता है। और तीसरा वो शख्स कि जो साहिब इल्म है लेकिन साहिब इल्म होने के बावजूद अपने ही इल्म पर खुद अमल नहीं कर रहा। रोजे कयामत सबसे ज्यादा पशेमान होने वाला होगा और उसकी पशेमानी की हालत रहम के काबिल होगी और सबसे ज्यादा अफसोस करने वाला होगा। मुझे अफसोस है कि तुम उस कौम के आलिम शुमार हो रहे और तुम उस कौम के लीडर शुमार हो और सरदार शुमार हो उसके बावजूद तुम किस तरीके से बात की पूंजी करके अल्फाज को इधर उधर बदल दिया करते हो। मेरे यहां पर हारसा मोड़ा अबू हारसा की तरफ जो अभी तक रफेल में खामोश बैठा हुआ था। अगर किसी नजराने ईसाइयों के सरदार में से एक सरदार था काफी उसने खामोशी अख्तियार की उसको जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक मतलब हमारे साथ मुतवजे हुआ अबू हमारे साथ था जो मजहबी मुशीर का सज्ञ है जो 120 साल का बूढ़ा और शाम के मरकज की नुमाइंदगी रखने वाला और सबसे बड़ा रूहानी आलिम जिसका नाम अबू हमारे साथ हमारे साथ और नौजवान ने जो बच्चे से सिखाओ और अबू हमारे साथ वो आलिम है जो ईसाइयों का आलिम है और नजरान के कबीले का एक सरदार बना। हारसा ने अबू हारसा से खिताब करते हुए कहा कि जनाब अबू हारसा आप इस कौम के सबसे बड़े आलिम हैं और आप इस कौम के सबसे बड़े रूहानी पेशवा और आप मरकजी ईसाइयों के शाम की तरफ से नुमाइंदे और आप भी वो हैं कि जिनके पास मुकद्दस किताब जामिया मौजूद है। जामिया वो किताब जो जिसके अंदर तमाम सही का आसमानी को जमा कर दिया गया था जिसमें सही का अगर आदम भी था सही का अगर शीश भी था सही का अगर इब्राहिम भी था सही पर जो मूसा भी था सही पर इब्लीस भी था सही पर ईसा भी था और फिर सही पे जमा किए गए थे इसलिए इस किताब का नाम है जामिया जमा जमा करने वाली किताब। चुनाची हारसा ने कहा क्या आपका काम ज्यादा क्या इन लोगों को बताए तो सही पे में क्या क्या चीज लिखी हुई है क्या पैगंबर आखरो जमान उनकी औलाद बेटे से चलने वाली है या बेटी से चलने वाली है उसको आप जामिया मंगवाइए मतलब दाना मंगवाने के बाद एक एक सही पे आसमानी को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद फिर पता चलेगा कि पैगंबर की औलाद बेटी से चलने वाली है या बेटे से चलने वाली है। चुनाचे इस रात से अगर ऐसा चला कि किताबें इस्लाम में आपको मंगवाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी बात बिल्कुल साफ और वाजिब हो जाए। आपको तो सही खबर है, हमने कहा कि हमारा राष्ट्रीय है बात सामने बढ़े हुए क्या हम आपको बड़े को धोखा दे रहे हैं। बताया हमने कि आसमानी किताबों में क्या लिखा होगा उसके बावजूद वे हुकूम बना रहे हैं कि पैगंबर की बेटी जो ही थे कासिम थे और इब्राहिम थे दोनों का इंतकाल हो गया अब तक उन्होंने कोई औलाद नहीं पर औलाद चलने वाली नहीं बस आखिर जमान के अंदर जो इमाम आने वाला इनकी औलाद तो हो ही नहीं सकता कि इनकी औलाद का बेटा ही नहीं जिसको कुरैश के अरब अख्तर कहा करते थे और अख्तर को ईसाइयों ने दूसरे अल्फाज लगा दिए। बस ये वो मुबाहिसा था कि पैगंबर का बेटा इतना अहम हो गया कि कुरान ने कहा नकू अबना अना व अबना को पता चला कुरान उस बेटे की बड़ी अहमियत थी निशा अना व निशा औरत की भी बड़ी अहमियत थी पैगंबर की बेटी से उन्हें चलने वाली थी इसलिए निशा अना व निशा और फिर उसे ईबो में लिखा गया पैगंबर सबसे करीबी आदमी था कि जिस पर कौन जुल्म करेगी इसलिए अनफोसना व अनफोसको आया है। असल में कुरान की आयत में पीछे बहुत तारीख छुपी हुई है उसके पीछे यह अल्फाज कुरान ने बड़े नजर खुले इस्तेमाल किए हुए हैं हर हर चीज के पीछे सबक छुपा हुआ है। अब एक मतलब आयशा ने कहा कि जब आप जामिया मंगवाई है और जामिया की बात कहीं चलने लगी एक मतलब आप तक और सचिव ने शोर मचा दिया बाकी देखो चार दिन से हमारा मुनाजरा जारी है अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ हम सुबह से बोल बोल के थक गए हमारी जबान सूख गई है और जो है लब खुश हो गए हैं पसीना आ गया है निशानी से पसीना जारी है सारे आवाम जो है गर्मी के हमारे दोपहर तक 12 बजे दवा हो गया है आवाम की भी हालत बुरी है हमारी भी हालत बुरी है इसलिए ऐसा किया जाए कि किताब जामिया को कल मंगवाया जाए और कल आने के बाद फैसला होगा कि पैगंबर की औलाद बेटे से चली है या बेटी से चली है ये हम सही पर आसमानी में देख रहे होंगे। तो समझा क्या आफत और सैयद की पॉलिसी तो ये थी क्या तो भाड़ा खुल जाए और फिर ये सब रात रात आश्चर्य हो जाएगा हमारा फौर धोखा तो बिल्कुल मजे हो जाएगा जब लोगों के हुकूम बना रहे हैं लेकिन सही को सब किताबों के अंदर लिखा हुआ कि पैगंबर की औलाद के बेटी के साथ चलने वाली है और यहाँ पर ये आसमानी किताबों के आगे उठने के बाद लोगों को धोखा दे रहे हैं बात जो है खुल जाएगी लेकिन तो जो है इन लोगों की अपनी सरदारी खतरे में पहुंच जाएगी शोर मचान शुरू कर दे कि बस इसको कल पर रखते मीटिंग जो है कल रखते हुए बर्खास्त आलसा ने भी सोचा तो चलो ठीक है बर्खास्त की जाए और बर्खास्त करने में एक मसला है ये भी है कि जो पैगंबर के नुमाइंदे आज उस मीटिंग में शामिल नहीं कल उनको भी दावत दी जाएगी कि वो लोग भी पैगंबर के नुमाइंदे भी आकर के हमारी गुफ्तगू को सुना सुना दे शामिल हो जाए। आलसा ने सोचा कि पैगंबर के नुमाइंदे भी शामिल होते और ज्यादा बेहतर अंदाज में अपना दिखा कर सके क्या जो दूसरा दिया है अब जब दूसरा दिया है तो फौरन सैयद ने खड़े होकर आयशा उससे कहा देखो इतना झगड़ा करने की जरूरत है पर तुम्हारा आवाम के सामने आपस में मुनाजरा करने की जरूरत है हम आपस में ये किताब जाना मौजूद आपस में बैठ कर जो है मसले को हल कर लेते हैं और किताब जाना तो मंगाने की जरूरत है हम वैसे ही बैठ जाते हैं कहाँ पर इतनी बड़ी किताब लाना ले जाना और उसमें बड़ा फर्क है एक ही किताब पैदा तो होती है और उसमें जो है कुछ इधर उधर हो गया तो मुश्किल बन जाएगी इसे हम आपस में बैठ के मसले को तय कर लेते हैं کہ سارے عوام کے سامنے اتنی کتاب پڑھ لے جائے وہ پائے یہ ہے اسی کے پائے ایک مرتبہ مجمع سے آواز آ جائے مجمع سے چیخ و پکار کرتے رہے کیا میں ہاں کیا میں ہاں نئے لگنے لگے کیا میں تو جانا دیکھنا نئے بند لوگ عوام کے سامنے پھر سید آسر کی بات ہے عوام نے بے تراشا نہ لے کے ہمیں تو جانا دیکھنا آج تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے آپ کو کتاب ہوا کر اسے دیکھے تو صحیح کیس میں لکھا گیا ہے اب تو سارے عوام کا اصرار ہو گیا کہ جانے کو دیکھنا ہے اب سارا کے مقابلے میں صحیح آپ کر بھی کیا کر سکتے چنانچہ جامعہ کو منگوایا ہے اور جامعہ چونکہ کئی صحیح آسمانی پر مشتمل حضرت آدم کا صحیفہ حضرت شیش کا صحیفہ حضرت ابراہیم کا صحیفہ حضرت موسیٰ کا صحیفہ حضرت عیسیٰ کا یہ سس اتنا بہت دیگر اس کے نتیجے میں اور بڑی کتاب جمع ہو اب اتنی بڑی موٹی تازی کتاب اس کو اٹھانے کے لیے کتنا احمد آدمی سے پاتا کا مزدور بلایا گیا اور مزدور جو اکشی غلام تھا وہ اپنے سر پر لاد کے پاتا جاتا تھا سامان ملا کرتا رہتا تھا اتنی بڑی کتاب جلد میں اٹھا کر کے سر پر سامان کی طرح لے کر آیا اور لاد کے بیچ کر رہتی تھی سر بہت بہت سامان جو خالی اتارا جاتا اس طرح جامع کتاب کو اتارا گیا ابدل کو لا کے اتاری گئی مرتبہ صحیح آسمانی کھل لے گئے سب سے پہلے حضرت آدم کا صحیفہ سامنے آیا اس کو کھولا گیا کھولنے کے بعد اس نے حضرت آدم اپنے بارے میں لکھ دیا کہ جب میں مٹی کا پتلا تھا اور مجھ میں اللہ نے اپنی روح پہنچی مکان تو فیل میں روح میں اپنی روح جو ہے آدم میں پہنچی جیسے آدم میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا اس کے نتیجے میں آدم کہتے ہیں کہ مجھے چھینک آئے چھینک زندگی کا آرمان تھی چنانچہ چھینک آتے ہی مجھے تھوڑی سی بیداری پیدا ہونے لگی میرا پتلا اپنے سے جسم میں چل گیا اور بیداری پیدا ہوتے ہی سب طرف مجھے عجیب منظر نظر آ رہا ہے میں نے دیکھا بہت سارے نور ہیں اندھیرے کے اندر اور یہ بہت سارے نور بڑی مقدار میں ہے ذرا سا اس کو ہٹ کر گردن گھما کے دیکھا تھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا نور تھا انتہائی بڑا نور بڑا چمکدار انتہائی بڑا نور تھا اور اس انتہائی بڑے نور میں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چار اور ایسے ہی چمکدار نور تھے اور اس کے بعد ان پانچ نور کے پیچھے پانچ اور نور نظر آئے اور اس کے بعد بہت دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا بہت دور تک اندھیرا چلا گیا تھا اور کافی اندھیرے کے بعد ایک انتہائی چمکتا ہوا ستارہ جو وہی نور کی طرح تھا مشدت کے نور کی طرح چنانچہ یہ سارے نور مجھے اندھیروں کے اندر نظر آنے لگے میں پروردگار عالم سے پوچھا کہ یہ سارے نور کیا ہے کہا آدم کہ جو اتنے سارے نور نظر آ رہے ہیں یہ 1,24,000 انبیاء کا نور ہے جس کو میں 325 شریعت لے کر کے دنیا میں بھیجوں گا آدم نے پوچھا کہ پروردگار یہ جو سب سے چمکتا ہوا نور ہے جس کی نور کی کرنیں اتنی شدت کے ساتھ کہ میری آنکھیں چونجیا رہتی ہے یہ اتنا شدت والا نور کس کا ہے کہا یہ اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا پھر اس کے ساتھ کیا اور نور اس جیسے ہیں وہ کیا ہے کہا اس نور کے ساتھ تو اس کے دائیں طرف وہ موجود ہے, وہ اس پیغمبر کا شہنشین اور قریب ترین آدمی ہوگا, پیغمبر کا آواز نہیں ہوگا. اور سرائے طرف جو نور ہے وہ پیغمبر کی بیٹی کا نور ہے, اور اس کے ساتھ ہی دو اور نور ہیں, اس بیٹی کے دو فرزند ہوں گے, ان دو فرزندوں کا نور جس کا شب و شبیر تھے اس طرح یہ حسن حسین ہے. اور اس کے پیچھے جو آٹھ نور اور نظر آ رہے ہیں وہ آٹھ اماموں کے نور ہوں گے تو انہیں فرزند کی نسل میں سے آئے. اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہو, دنیا تاریخ ہو جائے, ظلم اور چوروں سے بھر جائے گی, اور اس کے بعد ایک پور چمکتا ہوا جو ستارہ نظر آ رہا ہے وہ اسی نبی کے فرزندوں میں سے آئے گا, اور آنے کے بعد پوری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی, اور اس دنیا کو ظلم و جور سے نجات دلا کر عدالت و نور کی حکومت قائم کر دے گا. حضرت آدم نے پوچھا کتاب دلا رہا یہ جو نور ہے ان کے اندر کیا خصوصیت کہ جس کے نتیجے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو نبی بنایا گیا, میری ضروریات میں اتنی ساری اربوں خربوں نسل ہوگی ان میں سے صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان کو کیوں انتخاب کیا ہے؟ اور ہدایت نے کہا کہ میں نے سب انسانوں کے دلوں میں چھاپ کر دیا, اور چھاپ کر دیکھنے کے بعد مجھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سب سے زیادہ میری اطاعت کرنے والے نظر آئے. اس لیے اطاعت کی وجہ سے میں نے سب کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. آگا نے پوچھا بتاؤ دیا یہ جو سب سے چمکتا ہوا نور ہے جو تم نے کہا کہ یہ انبیاء بھی میری ضروریت نہ ہوگی, اور یہ سب سے چمکتا ہوا نور خاتم النبیین خاتم الانبیاء اور سارے امامت کا سلسلہ یہ سب کے سب میری ضروریت اور اللہ کے ساتھ ہے, آخر اس کو اتنا چمکتا اور اتنا برا ہی بنایا ہے اس کی وجہ سے کہا کہ یہ بیٹا اجنبی سب سے زیادہ انبیاء سے بھی زیادہ ہوں گے, اور ان کے جیسی معرفت میری اور خدا کی آشنائی اور خدا کا عشق جو ان کے دل میں ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں دیکھا. چنانچہ یہ بیٹا اجنبی سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ کی معرفت میں سب سے اعلیٰ ہے, اللہ کا اس دن کے دنوں میں سب سے زیادہ. اس لیے میں نے ان کو اشرف انبیاء بنایا تھا, اور ان کی سہولت کو بھی دیکھا کہ بالکل اسی کی طرح نقش قدم میں ہے, اس لیے ان کو بھی اتنا ہی نورانی پیدا کیا. اے آدم یہ سب تمہاری سہولت میں سے کہا پائے ہوں. ایسا نے کہا کہ دیکھا صحیح آدم کو پڑھا ہے, اس کے اندر آپ نے بیان کی اندر آدم کے بیان میں آخری پیغمبر کی اولاد بیٹے سے نہیں چلنے والی بیٹی سے چل رہے ہیں. اس میں اللہ کا آدم نے اس بات کو بالکل صاف الفاظ میں بتا رہا ہے. اس طرح ادب شیش کا صحیفہ کھلا ہے, جو پیغمبر ہونے کے ناطے پیغمبر بھی تھے اور ساتھ ساتھ حضرت آدم کی تصویر پشت میں آرام پا. حضرت آدم کی اولادیں اور جلدی جلدی پروان پائی. حضرت آدم نے اپنی دس नस्लों तक देखा, ये हजरत शीश दसवीं नस्ल है और उसका आत्म जिंदा है। तो हजरत शीश अभी पैगंबर बने नहीं, इसका आत्म मौजूद है। आदम ने सतावन तक शीश को नबूवत मुंतकिल हो। हजरत शीश अपने भाइयों और आदम की नस्लों के साथ एक दफा एक वाकया और बयान करते कहते कि मैं दूसरे और भाइयों और रिश्तेदारों के साथ जो असल में आदम ही की औलाद थे उनके दरमियान एक मुबाहसा हो गया और उसने कहा यह बात करने लगे कि सबसे अफजल इंसान कौन होगा, सबसे अशरफ इंसान कौन, सबसे आला तरीन इंसान कौन। आपस में गुफ्तगू चल रहे तो किसी ने कहा कि सबसे अशरफ इंसान हमारे दादा आदम है, इसलिए कि सबके सब उनकी सोफियत और औलाद में से आने वाले उनसे कोई असर नहीं हो सकता। किसी ने कहा नहीं, हजरत आदम से भी अफजल शायद फरिश्ते हो, इसलिए कि फरिश्ते कभी कोई गुनाह नहीं करते हैं बल्कि गुनाह पर सोचते भी नहीं, और वो फरिश्ते इतने मासूम हैं तो उनको अफजल होना चाहिए आदम और उसकी औलाद पर। किसी ने कहा नहीं, फरिश्ते सब फरिश्ते अफजल नहीं है बल्कि सिर्फ चार फरिश्ते अफजल है, मिकाइल और जिब्राइल और इब्राहीम पर जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं चार वो जो है सबसे अफजल है, इसलिए फरिश्ते भी हैं और सबसे अफजल फरिश्ते भी हैं, इसलिए सबसे अल्लाह की मखलूकात में अफजल तरीन मखलूक ये चार फरिश्ते होंगे। गुफ्तगू नहीं कहते शीश कहते हैं हम लोग आपस में गुफ्तगू तो कर रहे हैं लेकिन कोई यकीन बात नहीं कह रहा, अरे तो अपने अंदाजे अंदाजे से बात कर रहा है। तो हमने ये फैसला किया कि हम चलते हैं हजरत आदम के पास, अपने दादा आदम के पास, और दादा आदम के पास जाने के बाद उनसे पूछते हैं कि इंसान सबसे अफजल कौन होगा। सबने ये बात मंजूर कर दी, कहा उनका तजर्बा सबसे ज्यादा वो सबसे बड़े आलिम है, इसे दादा आदम ही से जाकर पूछते हैं कि सबसे अफजल कौन होगा। हम सब शीश का सब मिलकर के दादा आदम के पास पहुंचे और दादा आदम के पास पहुंचने के बाद हमने कहा दादा जान या बड़ दादा जान या लगभग दादा जान जो भी हो ताकि आप बताइए कि हम लोगों में बात क्यों नहीं है कि सबसे आदम और सबसे अफजल इंसान कौन हो। दोस्तों हजरत आदम कहने लगा तुम लोगों के आए क्या, राजा मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारे दादा आदम सबसे अफजल पांच का फरिश्ते सबसे अफजल है, पांच का चार फरिश्ते सबसे अफजल है, इसलिए हम लोग ना आपस में इख्तलाफ है, आप बताइए कि सबसे अफजल कौन होगा। तो दादा आदम बोले और कहा कि सबसे अफजल वो है जिसको तुम लोगों ने देखा भी नहीं, इसलिए कि जब मुझमें रूह डाली गई तो मैं हैरान और परेशान होता, हैरानगी की वजह से कि हर जगह हर हर जगह पर ये कलमा लिखा हुआ मैंने पाया, ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिम वसल्लम सब जगह कलमा लिखा हो, चारों तरफ जिस जगह में निगाह वहां पर यही कलमा हर जगह मुझे नजर आ रहा। और फिर मैंने देखा कि इससे आगे ये जो कभी लिखा है कि ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिम वसल्लम और औलादुहु वलीयुल्लाह और इन चीजों में जो वही होगा कि अंदर का जगह पर करने वाला था। मैंने परवरदिगार से पूछा परवरदिगार इनकी औलाद से मरा कौन है, तो मरवा आवाज में खुदरत आई कि आदम जरा ऊपर की तरफ देखा। मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो मेरे सामने चौदह नाम ऊपर की तरफ देखे। उसके बाद मैंने पूछा परवरदिगार सबसे अफजल कौन है, तो सबसे पहले जो आगे नाम आ रहा है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे नाम पता उनकी जानशी अली मुर्तजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे नाम पता फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नाम मेरे सामने से गुजरते थे और ये है वो अफजल अफराद जिनको परवरदिगार आलम ने सबसे फजीलत अता की है। ये खुद बताता है कि जिसमें यह बयान है कि वो रसूल जिसका जानशीन उसका दामाद भी होगा और उसकी बेटी होगी जिसके दो फर्जंद होंगे और वो फर्जंदों के बाद इमामों का सिलसिला नहीं दो फर्जंदों के धंधे से चले। अगर शीश का सही का उसने बताया उस पैगंबर की बेटी है जिसके दो बेटे होंगे जिससे नस्ल का सिलसिला आगे बढ़ेगा। आपने और सैयद में शोर मचा रखा किसी को वो आपस में मीटिंग करके उस एक दिन में तय कर चुके थे कि हम पहले अल्फाज की तोजी करने की कोशिश करें तो गौरव करने की कोशिश करेंगे ताकि मतलब बिल्कुल छे। लेकिन यहां पर ऐसा लगे कि तोजी हो ही नहीं सकती है तो हम सबके सामने एतराज करें कि बेटी से औलाद चल जाए। और उसके बाद अब आपका हादसा कमजोर होगा और जब कभी जोश में है मजमा लगा हो जोश में फिर थोड़े दिन के बाद भूल जाए। अब जो है फिर उसके बाद कहेंगे कि आप खुद पैगंबर से मुलाकात कर लेंगे तो आने जाने में दो तीन महीने निकल जाए अब आप अपने घर को होगी फिर वो भूल जाएगी। अगर ठीक है इस वक्त हम शिकायत ना करें कि फैसला फिर भी हमारे हाथ में हो जाए। इसलिए जो है अब तो देखेंगे कि कहीं पूजी नहीं हुए तो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बेटी के जरिए से जो पैगंबर की औलाद चलते हैं। यहाँ पर जो है अलशीश का शरीफा का बताया अरे तीन शरीफे और बाकी है अरत इब्राहिम का अरे मूसा का और अरत ईसा का खूबसूरत बहुत अहम शरीफा है उसमें बड़ी दास्तान आएगी इंशाल्लाह जो है कल मजलिस में ये तीन शरीफे आपके सामने पड़े। वो कितनी अजीम हस्ती होगी जिस हसीम अजीम हस्ती की पूरी कायनात हुकूमत छा जाती है लेकिन उसके बावजूद कर्बला के सिलसिले कितना ज्यादा गिरजा किया खून के आंसू होना और आघात के ऊपर होना कट्टर होना के सलाम को मेरा उन टुकड़ों पर जिनको टुकड़े टुकड़े कर दिया है और जिनको टुकड़े टुकड़े कर दिया उनका हृदय कासिम के भी टुकड़े हाँ वो माँ तो जवानी में विवाह हो गई उसकी तवज्जो का मदद सिर्फ वो शिशमा दूध पीता बच्चा था जो गोद में कासिम हाँ जब कासिम पर माँ की तवज्जो मरकूज हो गई सारी हमारे शब्द तमन्ना का मर्द बनने कासिम बन गए माँ की आरजू थी कि यह बड़ा हो और बड़ा होने के बाद जैसे ही शादी के काबिल होगा मैं उसकी शादी रचाऊंगी और बहू लेकर आऊंगी और बड़े आराम से जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन हाय किस्मत ने ये सामने दिखाया कि आशूर सामने आ गया और इस मतलब शब आशूर उसे खेमों पर जायजा लेने के लिए चले देखा कि उम्र परवाने कासिम को सामने बिठाया हुआ है इमाम हसन का अमामा सर सर पर रखा हुआ और कहती जा रही है कासिम बेटा देखो सबसे पहले तुम्हें कुर्बानी दे रहा है ऐसा ना हो और मोहम्मद पहले चले जाए ऐसा ना हो चाहिए पर पहले चले जाए सबसे पहले तुम्हें कुर्बान होना है क्या सोया आशूरा एक मत्तक
الذين ظلموا أيضا فلن يغفرهم